Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Shivananda Lahari in Hindi, presented by Mahamandaleshwar Swami Sri Atmananda Giriji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
सभी को दिखता था, घर में जिसको भी दिखाई पड़ता था कि इसने मल किया मूत्र किया। आजकल की माताएं तो डायपर लगा देती है और उसके ऊपर से उसको कपड़ा लगा देते हैं, और वो मल भी करेगा तो दिन भर भले उसी में पड़ा रहेगा, किसी को दिखाई नहीं पड़ेगा। उसने मल किया कि नहीं किया तो तब, लेकिन मां को पता चल जाता है, वो गोद में लेने वाली को उसका दुर्गंध तो आ ही जाता है ना। मल हो और दुर्गंध ना हो, मां समझती है। लेकिन वो प्रतीक्षा करते हैं कि घर पहुंचे तो डायपर चेंज करें, तब तक वो ढोते हुए फिरती रहेगी। संसार मल ही हमारे जीवन का दुर्गंध है, देख लो। ये संसार है, ये संसार मल ही हमारे जीवन में दोष बनकर बैठा हुआ है। और जब तक ये जीवन में मल रहेगा, आपने देखा है, आप तो मां बने हो, आप तो पिता बने हो, आप तो गृहस्थ हो, हम सन्यासी को क्या पता भाई ये सारी चीज। लेकिन शंकराचार्य जी को सब पता है, वो तो सर्वज्ञ है ना। लोग कहते हैं, महाराज आपने तो संसार किया नहीं, गृहस्थी किया नहीं, गृहस्थी की सारी बात आप कैसे जानते हो, हमसे आकर पूछते हैं है? तो हम बताते हैं कि भाई तुम लोगों के बीच में रहते हैं, तुम्हारा दिया हुआ खाते हैं, तो हमको पता ही है, तुम ही लोग रोते हुए बताते हो है? बच्चा, छोटा बच्चा जब तक मल में या मूत्र में डूबा रहेगा तब तक वो बच्चा रोता ही रहता है। ये तो आप लोगों ने अनुभव किया है। उसके रोने से ये पता चल जाता है मां को कि इसने जरूर मल मूत्र त्याग किया है। क्यों नहीं तो क्यों रोता, अभी अभी दूध पिला दिया है, फिर क्यों रोना है, जरूर मल किया मूत्र किया है, उसकी सफाई करनी जरूरी है। तुरंत फिर उसकी सफाई करती है, सफाई कर देती है तो फिर बच्चा बड़ा आनंद से सो जाता है। ये संसार मल से हम रचपच हुए हुए, इसीलिए जब तक ये मल की सफाई नहीं होगी तब तक हमारा रोना बंद नहीं होगा। हो जीवात्मा का रोना तब तक बंद नहीं होगा। कब तक? जब तक संसार मल की निवृत्ति नहीं होगी। ये रोना पड़ने का कारण ही तो यही है, और क्या है। और इस मल की सफाई होगी कब, कौन करेगा? भक्ति जननी, शंकराचार्य जी कहते हैं, उसकी सफाई करने वाली तो एक ही मां है, वह है भक्ति जननी। कैसे करेगी वो सफाई, उसको नलाएगी या धोएगी? कौन सा पानी से धोएगी? आनंद्राश्रु। भक्त जिस समय भक्ति की साधना करता है उसमें भक्ति का उद्रेक होता है उसके हृदय में, तो उसी के शरीर से, उनके आंखों से जो अश्रु धारा गिरते हैं, मानो कि उसके जीवन के मल रूपी दोष को धोने के लिए भक्ति ने पानी गर्म करके तैयार किया है। भाई क्या सुंदर भाव है इसमें। आनंदाश्रुभिरातनोति पुलकम निर्मल्यतच्छादनम। और उस भक्ति से प्रक्षालित विशुद्ध वस्त्र का, निष्काम कर्म रूपी वस्त्र से, दोष रहित कर्म रूपी वस्त्रों का भक्ति उस बालक भक्त रूपी अर्भक को छादनम आच्छादनम, ये नैर्मल्यता आच्छादनम उड़ा देती है कपड़ा, नलाने के बाद तुरंत गर्म कपड़ा उड़ा देती है मां बच्चों को, बढ़िया शुद्ध स्वच्छ कपड़ा, शुद्ध कपड़ा उस बच्चे को उड़ा देती है। उसके बाद नलाने के बाद कपड़ा पहनाए बिना, कपड़ा उड़ाए बिना मां दूध नहीं पिलाती है, पहले नलाती है, नहा धोकर उसके दोष मल सब हट जाता है तो तुरंत उसको निर्मल वस्त्र पहनाती है, शुद्ध धोए हुए कपड़ा पहनाएगी, फिर उसके बाद गोद में लेकर उसको दूध पिलाती है। भक्ति मां दूध पिलाएगी, हमारी मां ने भी ऐसे ही किया था, आपकी मां ने भी ऐसे ही किया था, भक्ति मां भी ऐसे ही करेगी। भक्ति मां कौन से दूध पिलाएगी, कैसे दूध पिलाएगी? आजकल के संदर्भ में यह दृष्टांत ठीक जच रहा है। वो पहले तो हमारी मां ने हमको स्तनपान कराया था, और आजकल की मां तो स्तनपान नहीं कराती है, बोतल पान कराती है। और बच्चा जब पैदा हुआ तभी से बोतल पान करता है, तो बूढ़ा होने के, जवान होने के बाद जब दारू पीने लगता है तो मां आकर रोती है, महाराज मेरा बेटा दारू पी रहा है, उसको समझाओ ना। अरे मां तुमने उसको बचपन में ही बोतल पकड़ा दिया है तो क्या करेगा वो, संस्कार की बात है, संस्कार की बात है, वो बोतल से प्रेम करेगा। हम लोग तो बार बार कहते हैं, हमारे पूर्वजों ने बार बार कहा है, बच्चे को गर्भ से ही संस्कार देनी चाहिए। और आज का संस्कृति क्या बोलता है, किसी भी बच्चों को ऊपर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, जो करे उसको करने दो, रोकना नहीं चाहिए, टोकना नहीं चाहिए, फ्रीडम स्वतंत्रता खुला छोड़ो, डांटो नहीं, रोको नहीं, टोको नहीं। परिणाम क्या होता है, गर्भ में रहते हुए ही उसका संस्कार हमने बिगाड़ चुके हैं। हमारा अध्यात्म शास्त्र वैदिक सनातन धर्म तमाम शास्त्रों से भरा पड़ा है, तमाम उदाहरणों से भरे पड़े हैं। इस प्रकार का एग्जाम्पल न कुरान में है न बाइबिल में है। मां के गर्भ में ही बच्चों को संस्कार देनी चाहिए, ये उदाहरण हमारे वैदिक सनातन धर्म के शास्त्रों में ही भरे पड़े हैं, और ऐसा दृष्टांत न बाइबिल में है न कुरान में है, किसी भी दुनिया का और शास्त्र में नहीं है। हमारा तो उदाहरण है, अभिमन्यु को सारी धनुर्विद्या चक्र व्यूह भेदन करने की शिक्षा मां के गर्भ में ही प्राप्त हो गया था। जन्मने के बाद दीक्षा नहीं दी, शिक्षा नहीं दी है, गर्भ में रहते ही प्राप्त हो गया था। आप लोगों ने महाभारत पढ़ चुके हो, सुना है, देखा है, ये प्रसंग से आप लोग परिचित हो। अर्जुन जब गुरु द्रोणाचार्य जी से अस्त्र शस्त्र सीख कर आता था, और उसको पता था कि मेरा बेटा उसके गर्भ में है, तब उसको आगे रखकर अर्जुन आज दिन भर क्या क्या सीखा, कैसे सीखा, वो सारी बात अपनी पत्नी को सुनाता था। पत्नी को इसलिए सुनाता था कि मेरा बेटा उसके गर्भ में जो है ना वो सीख जाए, समझ जाए। हाँ। और हुआ यही, मां की गलती से अभिमन्यु को मरना पड़ा है। समझ गए कि नहीं? उसको यदि महाभारत में चक्रव्यूह में फंसकर मरना पड़ा तो वो मृत्यु का कारण कौन है? उसकी मां है। ये तो आप समझ रहे हो ना? हुआ क्या था, चक्रव्यूह भेदन करने की कला तो वो सीख चुका था, क्योंकि उसकी पत्नी सावधानी पूर्वक सुन रही थी और पेट के बच्चे ने वो सब कुछ सुन रहा था, वो ज्ञान उसको गर्भ में ही प्राप्त हो गया था। लेकिन जब अर्जुन चक्रव्यूह से निकलने की बात सुना रहा था अपनी पत्नी को, उस समय उस बच्चे की मां सो गई, वो नहीं सुन पाई। परिणाम क्या हुआ, कैसे निकलना है वो नहीं जान पाया, कैसे घुसना है, चक्र भेदन करके अंदर घुसना कैसे, ये तो वो जान गया था गर्भ में ही, लेकिन वहां से कैसे निकलना है ये विद्या उसको प्राप्त नहीं हो पाया। किसके चलते नहीं हो पाया? उसकी मां के चलते। कैसे? क्योंकि वो सो गई। हा? बता रहा था अर्जुन, वो सो गई। मां तो केयरलेस है, और हमारी मां जब केयरलेस होती है तो बच्चे उद्दंड पैदा होते हैं। तो आज ये संस्कार जरूरी है। हम बार बार कहा करते हैं कि शिक्षा की बात करते हो तुम, विश्व ये मानता है कि दुनिया में कोई भी निरक्षर न हो, सब साक्षर हो, सब शिक्षित हो, और उसके लिए करोड़ों अरबों रुपया खर्च किया जाता है, लेकिन किसी ने भी संस्कार देने की योजना नहीं बनाई है। संस्कार देने की योजना ना हम घर के लेवल में करते हैं, ना सरकार राज्य के लेवल में करता है, ना राष्ट्र देश के लेवल में करता है, ना विश्व समस्त जनमानस के लेवल में करता है। संस्कार एक अनिवार्य जरूरी चीज है, ये किसी के आजकल के किसी भी नीति निर्धारकों के दिमाग में ये बात नहीं आई है। परिणाम क्या हो रहा है, परिणाम क्या हो रहा है, शिक्षित तो हो रहे हैं, जो जितनी शिक्षित हो रहे हैं वे सब उद्दंड शिक्षित हो रहे हैं, अधूरे शिक्षित हैं। शिक्षा तब तक अधूरी रहेगी तब जब तक कि संस्कार से युक्त न किया जाए। ये हम प्रवचनों में हमेशा कहा करते हैं, लेकिन हमारी बात सुनता कौन है? तुम लोग सुनने आते हो, तुम सब कठोपनिषद के गाई बने हो, समझ गए कठोपनिषद के गाई हैं? नहीं मालूम कठोपनिषद के गाई है? दूध नहीं देती इतनी नहीं, घास भी नहीं खाती है, दूध नहीं देती है, घास नहीं खाती है, इतना ही नहीं है। पीतो दका जगद तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया। आप लोग से इंद्रिय हो, अब आप निरिंद्रिय हो गए। अब आप लोगों में से कोई भी किसी के पास योग्यता है बच्चा पैदा करने की? निरिंद्रिय। पीतो दका जगद तृणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया। उद्दालकारुणी वाजस्रवा, अपने यज्ञ की सफलता के लिए ऐसे ऐसे बूढ़ी बूढ़ी गायें बड़ी मुश्किल से चल सके, ऐसे गायों को ब्राह्मणों को दान देने के लिए ले जा रहा था। नचिकेता ने पकड़ लिया अपने बाप के हाथ, पिताजी ये गायों को कहां लेके जा रहे हो? वाजस्रवा उद्दालक ने आरुणि ने कहा, बेटा मैंने यज्ञ किया है विश्वजीत, उस यज्ञ की आज पूर्णाहुति है और उस यज्ञ में ये सब गायें ब्राह्मणों को दान देने के लिए ले जा रहा हूं। नचिकेता ने कहा, बेटा पिताजी ये तो पी तो दका, पानी जितना पीना था पी लिया, अब तो पानी पीने की भी क्षमता नहीं है इनमें, पी तो उदका, जगदत्रिणा जितना घास खाना था उन्होंने खा लिया, अब तो घास खाने की भी क्षमता, मुख में दांत नहीं है, हम लोगों के हैं चौकटा लगा रखा है, बेचारे वो गायों को कहां से चौकटा लगाएंगे भाई, हैं? उन गायों के दांत को कौन लगा देगा, बेचारे जो गिर गए गिर गए। जगत तृणा दुग्ध दोहा, दूध जितना देना था दे चुके हैं, अब तो खून ही नहीं उनके शरीर में तो दूध कहां से आएगा। निरिंद्रिया अब ब्याहने की संभावना ही नहीं है, पुनः गर्भाधान करके फिर ब्याहेंगे फिर दूध देंगे, ये कल्पना ही खत्म। अनंदा नामते लोका तांस सा तान ददाती ददत्त, ऐसे गायों को दान में देने वाला व्यक्ति आनंद रहित अनंद नाम के लोक में मरने के बाद जाएगा। पिताजी कर क्या रहे हो, किधर हो, बढ़िया बढ़िया दूध वाली गाय कहां है, क्या तुम्हारे गोठ में बढ़िया बढ़िया दूध वाली गाय नहीं है? है बेटा, फिर कहां है? बोले वो तो तुम्हारे लिए रखा है, मर गए। ऐसे मोह में पड़े रहोगे तो कहीं विश्वजीत यज्ञ सफल होगा? नचिकेता ने सोचा कि मेरा बाप मेरे कारण से नरक जाने वाला है, मेरे कारण माने मैं बेटा हूं, मेरे प्रति मोह है, मोह के कारण अच्छे गाय घर में रखा है और इन बूढ़ी गायों को दान करने जा रहा है, इसका फल होगा उसको नरक की प्राप्ति, और शायद मैं इनका बेटा ना हुआ होता तो मोह न होता, मोह न होती तो बढ़िया दूध वाली गाय घर में न रखते, वो भी ब्राह्मणों को देते, हैं? मेरे कारण से नरक जाने वाला है, इसको मुक्ति तो करनी ही पड़ेगी, बचाना तो पड़ेगा ही। पकड़ लिया हाथ नचिकेता ने अपने बाप के, पिताजी बोलिए गाय तो ब्राह्मणों को दोगे, ये गाय तुम लेके जा रहे हो ये गाय तो जरूर तुम ब्राह्मणों को दोगे, लेकिन ये बताइए कि मुझे किसे दोगे, किसको दोगे मुझे? बोलता नहीं है, एक बार पूछा, दो बार पूछा, तीसरी बात हाथ पकड़ के हिलाया अपने बाप को, बोलो किसको दोगे? बाप को गुस्सा आया और कह दिया कि मृतवे त्वा ददामी, जा मर जा बाहर जाके खेल। हम भी कहते कभी कभी गुस्से में आते हैं तो मरता क्यों नहीं, उधर जाकर खेलता क्यों नहीं, कमरे में जाकर गुस्से में तो कह देते मरता क्यों नहीं है, क्योंकि आपका बेटा नचिकेता नहीं है इसलिए मरता नहीं है, इसलिए जिंदा ही रहता है, इसलिए कोई समस्या नहीं रहती है, लेकिन वो तो नचिकेता था, बाप ने कह दिया मरता क्यों नहीं, तो इसलिए अच्छा मृतवे त्वा ददामि, प्रतिज्ञा हो गई तुम्हारी, संकल्प हो गया? बोले हो गया, चलते हैं अपने राम, तो मृत्यु क्या चले गए यमराज के यहां देख लो। लेकिन नचिकेता ने बचाया, बाप को नरक जाने से बचाया, गुस्से से ही सही नरक जाने से बचा दिया नचिकेता ने। क्यों? संस्कारी था वो। हमारे सनातन धर्म में दूसरा उदाहरण है प्रहलाद का। इंद्र राक्षस कुल का वंशनाश करने के लिए कयाधु को, गर्भवती कयाधु को, हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु को स्वर्ग लेके जा रहा था इस उद्देश्य से कि मैं उसको स्वर्ग में रखूंगा तो वहीं उसका बच्चा पैदा होगा और जिस समय बच्चा पैदा होगा उसी समय उसको पकड़ूंगा और मार डालूंगा। तो राक्षस कुल का वहीं वंशनाश हो जाएगा, बीज नाश हो जाएगा, फिर उसके बाद कयाधु को वापस कर दूंगा। लेके जा रहा था, नारद जी बीच में टपक गए, इंद्र ये कहां ले जा रहे हो, ये तो हिरण्यकश्यप की पत्नी है कयाधु। बोले हां, कहां ले जा रहे हो तुम? मैं इसको स्वर्ग लेके जा रहा हूं। क्यों? इसके पेट में जो बच्चा है ना, वो हिरण्यकश्यप का वंशज है, उसको मारूंगा, स्वर्ग में ले जाऊंगा, वहां जन्म होगा तब उसको पैदा होते ही मार डालूंगा, राक्षस कुल का संहार हो जाएगा। नारद जी ने इंद्र को समझाया, इंद्र इस तरह निर्दोष बच्चे को मारना नहीं है, मारना नहीं है, सुधारना है। मारना तो सभी जानते हैं, सुधारना कोई नहीं जानता है, संत ही सुधारना जानते हो। महात्मा लोग मारना नहीं जानते, महात्मा क्या करते हैं, संत क्या करते हैं? मारते नहीं, संत सुधारते हैं। इंद्र मारने के लिए तैयार था, नारद सुधारने के लिए तैयार हो गए। बेटा छोड़ दे, दे दे मुझे, दे दे, मैं राक्षस के पुत्रों को, राक्षस के वंशज को ऐसा सुधारूंगा कि ये परम भगवान का भक्त हो जाएगा, छोड़ के जा। इंद्र मान गया और छोड़ दिया, और नारद जी ने अपने आश्रम में ले गए, कयाधु को वहीं रखा। प्रतिदिन प्रहलाद को लक्ष्य करके कयाधु को भगवत चरित्र सुनाया। आप लोगों ने ये सारे प्रसंग सुन चुके हो। नारद जी भगवान का दिव्य अति दिव्य चरित्र सुनाते हैं कयाधु को, ताकि उसका पेट में जो बच्चा है वो सुधर जाए। ये आज वो संस्कृति खत्म हो चुकी है। हमारी संस्कृति तो यह है कि गर्भ से ही बच्चों को संस्कार देने की संस्कृति थी, पूर्वीय संस्कृति। आज हम सुनते हैं मां गर्भवती होती है, हमारी बहू, हमारी बेटियां, डॉक्टर लोग उनको सजेशन देते हैं कि अब रेस्ट करना चाहिए, काम नहीं करना चाहिए, अब आराम करना चाहिए। अब आराम करेंगे तो घर में बैठे रहेंगे, तो करेंगे क्या? तो आजकल ऐसे ऐसे चैनल और मूवी, हाथ में रिमोट लेंगे, खाट में सोएंगे और दुनिया भर के टीवी देखते रहेंगे, और उस टीवी में सब मार काट लूट खसोट बलात्कार दुराचार व्यभिचार, नायक और खलनायकों की भूमिका के अलावा टीवी में आता क्या है? और आता भी है, धार्मिक चैनल तो है, आस्था है, संस्कार है, बहुत से है, लेकिन देखता कौन है उसको? टाइम पास, आराम करना है ना। हमारी बहू और बेटियों को वो जरा भी ख्याल नहीं है कि वो स्क्रीन में जो दृश्य आ रहा है और उन शब्द में सुन रही हूं और मेरे आंख से देख रही हूं, वो सारा का सारा संस्कार मेरे पेट के बच्चे में रिकॉर्ड हो रहे हैं, उसको जरा भी ख्याल नहीं। कौन शिक्षा देगा ये बात, कौन कहेगा? वो डॉक्टर कहता है कि तुम धार्मिक सीरियल देखो, तुम शिवपुराण पढ़ो, तुम भागवत पढ़ो, रामायण पढ़ो। कहता कोई डॉक्टर, आराम करो, घर में बैठो, काम नहीं करना। लेव जी, मंदिर न जाना, यहां तक कह देते मंदिर नहीं जाना। क्यों बेटा? मंदिर में भीड़ भड़ाक्का होता है, कोई तुमको धक्का मार देगा। लेव जी, सुरक्षा के दृष्टि से मंदिर नहीं जाना, भीड़ भड़ाक्का में किसी ने धक्का दे दिया, तुम गिर गए। क्या बात करते हो, समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में नहीं आता है। कहते हैं कि ये शरीर जब पैदा हुआ मां के गर्भ से, 2 किलोमीटर दूर पानी लेने जाना पड़ता था मां को, और पेट में पानी का घड़ा है और पेट में बच्चा है, और पानी लेकर आई, जैसे घड़ा रखा बच्चा पैदा हो गया, उस बच्चे का नाम आत्मानंद गिरी हो गया। कौन कहेगा उसको आराम करो करके, बिचारी को है? कौन कहेगा आराम करो करके? आराम कर पाएगी वो है बिचारा? संस्कार नहीं है, शिक्षा है, संस्कार नहीं है। बाबा, भक्ति जननी क्या करती है? भक्ति जननी को शिक्षा की चिंता नहीं है, भक्ति जननी संस्कार की चिंता करती है कि उसको संस्कार देना है। अभी से पालने में सुलाते हुए ही वह संस्कार देने लगती है। कौन सा संस्कार देती है? दूध क्या है उसको पिलाने का? वाचा शंख मुखे स्थितैश्च जठरापूर्तिम् चरित्रामृतैः। दिव्य भगवान शिव के दिव्य अति दिव्य चरित्रों रूपी अमृत का, भगवत चरित्र रूपी अमृत का वह पान कराती है, वही दूध है। हाँ, कौन पिलाती है ये? भक्ति जननी। किसको? भक्तार भक को, भक्त रूपी बच्चे को। किससे पिलाती है वह दूध? बोतल से नहीं। वाचा शंख मुखे, पहले के जमाने में यही तो था बच्चों को दूध पिलाने के लिए। हर घर में शंख होता था, और जब मां के दूध से बच्चे की तृप्ति नहीं होती थी तो गाय का दूध गर्म करके शंख में डाला जाता था, और शंख का जो अग्र भाग है, नुकीला भाग, उस नुकीले भाग से बच्चे के मुख में गाय का दूध पिलाया जाता था। पहले के जमाने में शुद्ध गाय का दूध पिलाया जाता था। अब आजकल तो मां अपने दूध तो वो छूने भी नहीं देगी। पता नहीं हमको सुना देते हैं संसारी लोग, आज की युवती है क्यों नहीं दूध पिलाती है? बोले नहीं, अपना सुंदरता बिगड़ जाता है, शरीर की सुंदरता बिगड़ जाती है। क्या बदमाशी शुरू हो गई है, बोतल पिला दिया। गाय का दूध नहीं मिलता है, क्या करोगे? पाउडर घोल के पिला दिया, और क्या संस्कार होगा उनको? और किससे पिला रहे? देखो बोतल, कांच का बोतल, यहां शंख के मुख से पिलाना था। शंख हमारे वैदिक सनातन धर्म में वह ज्ञान का प्रतीक है, शंख ज्ञान का प्रतीक है। वाचा शंख मुखे स्थितैश्च जठरा पूर्तिम चरित्रामृतै। उस भक्त रूपी अर्भ को, भगवत परमात्मा के दिव्य चरित्र रूपी अमृत को शंख रूपी माध्यम से वो भक्त रूपी अर्भ को कान से पिलाती है। लोहरी वही तो गाती है, वो उसी से वह बच्चा तृप्त होता है। शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी संसार स्वप्नम तेज मोह निद्राम मदालसा वाक्यम अवाच्य पुत्रम। हम क्या सुनाते हैं अपने बच्चों को सुलाने के लिए? यही सुनाते सुनाते हैं ये है? अरे कुछ नहीं, चंद्रशेखर 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 पाई माम, यही गा दो ना सो जाएगा वो। चंद्रशेखर 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 रक्ष माम, यही गा दो ना भाई। कुछ नहीं, शिवाय नमः, हराय नमः, भवाय नमः, मृडाय नमः, यही तो दिव्य अमृत है, इससे वह तृप्त होता है। वाचा शंख मुखे स्थितैश्च जठरा पूर्तिम, जठरा आपूर्तिम, बच्चे को जो भूख लगेगा तो क्या पिलाएगी मां? दिव्य अमृत ही, परमात्मा के दिव्य चरित्र रूपी अमृत का शंख के माध्यम से पिलाती है मां। और उसके बाद जब बच्चा दूध पीकर जब तृप्त होता है